नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा की कमियों और अनियमितताओं को दूर करेगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण की प्रक्रिया जनवरी महीने से शुरू होगी। लगभग 25,000 रिक्तियों के लिए प्रकाशित किया जाएगा विज्ञापन। पूर्व रेलवे के जसीडीह झाझा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन आज तीसरे दिन भी बाधित। परिचालन सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर कम होने से दिन में भी हो रहा है कनकने का एहसास। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा की कमियों और अनियमितताओं को दूर करेगी। उत्तराखंड के कौचर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था, नए कानून में इसे बढ़ाकर 125 दिन का कर दिया गया है।
मनरेगा में कई तरह की कमियां थी, कई तरह की विसंगतियां थी, कई जगह भ्रष्टाचार की पर्याय वो योजना बन गई थी और इसलिए मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी योजना मोदी जी ने बनाई है। तो बेरोजगारी भत्ते की पुख्ता व्यवस्था और अगर मजदूरी समय पे नहीं मिली, देर से मिली, तो लंबित मजदूरी के लिए ब्याज की तरह अलग से राशि देने की व्यवस्था भी हमने कर दी है।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण की प्रक्रिया जनवरी महीने से शुरू हो जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि 20 जनवरी से पहले बीपीएससी को रिक्तियों का प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस चरण के तहत लगभग 25,000 रिक्तियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए 15 जनवरी तक अधियाचना भेजी जाएगी।
आने वाले समय में आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग TRE-4 की भी नियुक्तियां करेंगे। TRE-4 में भी रोस्टर क्लियरेंस और अधियाचना हम लोग 15 से 20 जनवरी तक निश्चित रूप से बीपीएससी को भेज दें। और अनुकंपा पर जो भी नियुक्तियां थी वो भी हम लोगों ने करीब 5,500 कर दी है विभिन्न पदों पर।
श्री कुमार ने कहा कि शिक्षक भर्ती के अलावा उच्च विद्यालयों में 5,500 पुस्तकालय अध्यक्षों की भी नियुक्ति का प्रस्ताव है। इसकी रिक्ति भेजने से पहले संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विशेष विद्यालय अध्यापक के 7,279 पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्ति भेजी जा चुकी है। वर्ष 2025 में प्रदेश में अब तक 3 अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई है। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था पंकज कुमार दरात ने बताया कि कुल 1,421 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए चिन्हित किया गया है।
एक धारा है 107 BNSS का, जिसमें अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में 1421 अपराधियों को पूरे राज्य स्तर पर चिन्हित किया गया था विभिन्न थाना आदि के द्वारा। उसमें 407 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव भी माननीय न्यायालय में भेजे गए और उनमें जो प्रस्ताव भेजे गए उसमें 80 अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति जब्ती की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है और 3 अपराधी के विरुद्ध संपत्ति जब्ती के आदेश भी न्यायालय से पारित हुए।
श्री दराद ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों कयाजी, पूर्णिया, दरभंगा और पूर्वी चंपारण में राज्य पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS के 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय खुलेंगे। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने इस संबंध में गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। दरभंगा सदर थाना को देशभर में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2025 की जारी वार्षिक रिपोर्ट में देश के 18,000 से अधिक थानों में दरभंगा सदर थाने को यह उपलब्धि हासिल हुई है। वहीं राज्यवार चयनित 74 पुलिस थानों की सूची में दरभंगा सदर थाना, दरभंगा का अलीनगर थाना और नालंदा का थरथरी थाना शामिल है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आधारित स्कैन एंड शेयर सेवा के माध्यम से OPD पंजीकरण में बिहार देश में पहले स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि सुविधा से अब तक 5 करोड़ से अधिक मरीज लाभान्वित हुए हैं। पूर्व रेलवे के जसीडीह झाझा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन आज तीसरे दिन भी बाधित है। डाउन लाइन को दुरुस्त कर लिया गया है जबकि अप लाइन पर परिचालन बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। आसनसोल रेल मंडल के जनसंपर्क पदाधिकारी बिपला बौरी ने बताया कि 200 रेल कर्मियों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम दिन रात काम में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि मालगाड़ी के गिरे हुए डिब्बे को हटाने का काम पूरा कर लिया गया है, अब ट्रैक की मरम्मती का काम चल रहा है। गौरतलब है कि 27 दिसंबर की रात लाहवन और सीतारामपुर स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से दिल्ली हावड़ा मुख्य मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया है। इधर दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के अधिकतर हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का मामूली अंतर रह गया है, जिसके चलते लोगों को दिन में भी कनकनी का एहसास हो रहा है। वहीं उत्तर पश्चिम भागों में कई स्थानों पर घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 31 दिसंबर तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी, साथ ही इस अवधि में घना कोहरा छाये रहने की भी संभावना है।
राज्य के अधिकांश भागों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। 1 या 2 स्थानों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। 31 दिसंबर 2025 राज्य के उत्तर और दक्षिण पश्चिम जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। अधिकांश जिलों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति एवं अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया का फारबिसगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना पर जा सकते हैं। भारत की विकास यात्रा में वर्ष 2025 एक निर्णायक कालखंड है। इस वर्ष कल्याणकारी नीतियों ने प्रगति को जन्म दिया और मजबूत इरादों ने सार्थक परिणाम दिए। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज प्रस्तुत है 2025 में सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत की प्रगति पर एक रिपोर्ट।
इस साल भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निर्णायक रूप से राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल हो गया है। यह वर्ष देश के आध्यात्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण था। जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो वहीं नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में राम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वजा फहराया। यह वर्ष इसलिए भी शानदार रहेगा क्योंकि दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। इसी तरह भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिससे वैश्विक विरासत शक्ति के रूप में देश की स्थिति काफी मजबूत हुई। सामूहिक भागीदारी की भावना से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को एक साल तक चलने वाले उत्सव के रूप में शुरू किया गया। करीब 1,60,00,000 से अधिक नागरिकों ने अपनी प्रस्तुतियां रिकॉर्ड की।
वंदे मातरम का मूल भाव है भारत माँ भारती। हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है। ये सामर्थ्य भारत के 140 करोड़ लोगों में है। हमें इसके लिए खुद पर विश्वास करना होगा।
इस बीच 2025 में आस्था और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में जन भागीदारी अभूतपूर्व पैमाने पर पहुंच गई। प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों ने भाग लिया, जो वैश्विक धार्मिक सभा का एक कीर्तिमान स्थापित हुआ। इस साल देश ने अपने संस्थापक नेताओं का भी सम्मान किया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर विशेष सिक्के और डाक टिकट जारी करने सहित स्मारक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मनाई गई। कुल मिलाकर इन घटनाक्रमों ने 2025 को ऐसे वर्ष के रूप में रेखांकित किया जहां भारतीय सभ्यता का आत्मविश्वास एक दार्शनिक सामूहिक और स्थायी अभिव्यक्ति में बदल चुका है। आदर्श और रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ग्रामीण विकास मंत्री और जदयू विधायक श्रवण कुमार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक होंगे। भाजपा के विनोद नारायण झा को उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। इसके अलावा 8 सचेतक बनाए गए हैं। संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए 3 चरणों में होने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। आयोग ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना के कगरेट औद्योगिक क्षेत्र में कबाड़ उठाने के समय एक क्रेन के पलट जाने से बिहार के 2 श्रमिकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान पश्चिम चंपारण जिला निवासी शंभु मुशर और रोहतास जिला निवासी मुन्ना कुमार के रूप में हुई है। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं पूर्णिया जिले के बनमनखी थाना क्षेत्र अंतर्गत महाराज जी गांव के पास 2 मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की टक्कर में 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मुंबई के एक आभूषण दुकान से 2,62,00,000 रुपए मूल्य के जेवरात की लूट के मामले में बिहार STF और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के अरार गांव में पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात चोर शरीफ आलम के घर से अष्ट धातु की 2 मूर्तियां बरामद की है। मौके से हथियार समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शरीफ आलम की मां और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को 120 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जनवरी से। दैनिक जागरण ने लिखा है, हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग पर दूसरे दिन भी परिचालन ठप। प्रभात खबर की सुर्खी है, अरावली सेंगर सब पर सुप्रीम रोक। दैनिक भास्कर लिखता है, कजरा से चमकेगा बिहार, 2 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर में संथाली गीत गाया। आज अखबार लिखता है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का चपरासी 75,000 रूपये घूस लेते धराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा की कमियों और अनियमितताओं को दूर करेगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के 4थे चरण की प्रक्रिया जनवरी महीने से शुरू होगी। लगभग 25,000 रिक्तियों के लिए प्रकाशित किया जाएगा विज्ञापन। पूर्व रेलवे के जसीडीह झाझा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन आज 3रे दिन भी बाधित। परिचालन सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर कम होने से दिन में भी हो रहा है कनकनी का एहसास। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।